इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताई श्री श्री राधा राशेश्वर देव से श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। पंचतत्व नृष्ण देव भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरियस टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू गुरु वरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओं ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सत्वा स्कंद अध्याय 15 43 44 दोनों श्लोक ठीक है। राग द्वेषश्च लोभश्च शोक मोहो भयं मदः मानोपमान असूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादख्युत निद्रा शस्त्रवस्त्वेवमादय रजस्तम प्रकृतयः सत्व प्रकृतयः कुचित। धन्यवाद। बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी कामिच्छा तथा अज्ञान रजो तथा तमगुण के कारण दूषित हो जाती है। यो आसक्ति शत्रुता लोभ शोक मोह भय मद झूठी प्रतिष्ठा अपमान द्वेषानुसरण छलावा ईर्ष्या असहिष्णुता कामेच्छा मोह भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है। ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं। तात्पर्य, जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है, किंतु भौतिक प्रकृति में तीन गुणों के द्वारा कभी रजगुण तथा तमगुण की मेल से तो कभी सद्गुण के द्वारा अनेक व्यवधान आते रहते हैं। इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकतावादी दृष्टि से परोपकारी राष्ट्रवादी तथा अच्छा व्यक्ति भी है तो जीवन की ये सारी धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो जाती है। तो फिर शत्रुता लालचा मोह शोक तथा भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति न जाने कितना बड़ी बाधक होगी। विष्णु रूपी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो हमारा असली ध्येय है, इन विभिन्न अवरोध या शत्रुओं को जीतने में मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरे शब्द में मनुष्य की इस संसार में ना तो अच्छा बनने में ना बुरे बनने में रुचि रखनी चाहिए। इस भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाएं और बुराएं एक सी है, क्योंकि वो प्रकृति के तीन गुण से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को प्रकृति की पार जाना होता है। ये यहां तक कि वैदिक अनुष्ठान भी प्रकृति की तीन गुण से उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, त्रैगुण्या विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्तम निरोग्य खेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः भौतिक प्रकृति के तीन गुण की वर्णन है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबके पर हो, समस्त द्वंद से लाभ हानि की चिंता से मुक्त हो तथा आत्मा में स्थित हो जाओ। भगवान ने भगवद गीता में अन्यत्र भी एक कहा है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था। यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, अर्थात यदि वो सत्वगुण होता है तो वो उच्च लोक को जा सकता है। इसी प्रकार यदि वो रजो तथा तमगुण से दूषित होता है तो वो इसी जगत में बना रह सकता है या फिर पशु जगत में गिर सकता है। किंतु ये सारी पद आध्यात्मिक मुख्य की पथ में अवरोध है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इस तथाकथित अच्छाई तथा बुराई को पार कर जाए और कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति की पद पर पहुंच जाए तो इसका जीवन सफल हो जाता है। इस संबंध में उसे अत्यंत साहसी होना चाहिए, जिससे ये कृष्ण भावना की शत्रुओं को पराजित कर सके। इस जगत में अच्छे तथा बुरा की परवाह न करते हुए डटकर कृष्ण भावना मृत का प्रचार करना चाहिए। राग द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयं मदः मानव मानसुया च मया हिंसा च मत्सरः रज प्रमाद क्षुद निद्रा सत्रवस्तु एवं आदयः रजस्तम प्रकृतयः सत्व प्रकृतयः कुचित। सबसे पहले मेरा परम आराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की अभय चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करके कृपा भी प्रार्थना करके और समर्पित होकर संस्था की संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की चरण कमल पर प्रणति ज्ञापन करके समर्पित होकर और कृपा प्रार्थना करके सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्य लोग की चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करके और कृपा प्रार्थना करके इस क्षेत्र की उपस्थित सभी वैष्णव भक्त लोग की चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करता हूं और कृपा प्रार्थना भी करता हूं, क्योंकि श्री श्री राधा रास बिहारी जी कृपा से प्रभुपाद की महती कृपा से हम लोग को सुनने भागवत सुनने को मिलता है इस जगत में, इस दुनिया में। भागवत पढ़ना और सुनना ये भी बहुत मुश्किल है इस जगत में। और आज जो श्लोक हम सुन रहे हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में ये उपदेश दे रहे हैं, जो भक्त को कैसे क्षत्रियों को परास्त करना चाहिए, जिसे बाहर की दुनिया के लोग आप देख रहे हैं ना, पैसा के लिए उनका जो शत्रु लोग होते हैं ना उनको भी परास्त करते हैं, एंटीपैटी होते हैं, कोई बिजनेस में है, कोई पॉलिटिक्स में है, उनका पीछे लगे रहते हैं, कुछ लोग उनको परास्त कर वो जीतते हैं। भक्ति योग में हमको बलवान बनना चाहिए, अपना बल पर नहीं। ये एक भक्ति योग ऐसा एक पथ है, खुद का बल में बलवान होना ये बहुत मुश्किल है, और खुद का बल पर ही ये हमारा जो शत्रु है उनको परास्त करना ये भी मुश्किल है। पहले नारद मुनि गिना है राग द्वेष लोभ शोक मोह भय, कितना शत्रु पढ़ लीजिए सब। श्रीधर स्वामी ने यही लिखा है, जेतव्य शत्रुन, इनको हम जीतना चाहिए। शत्रु दो तरफ की शत्रु होते हैं ना, भीतर एक है बाहर एक है। और चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ने प्रार्थना किया है, काल कली बलिना इंद्रिय बहिरी बरगा, कलियुग में भक्त के लिए बहुत बड़ा शत्रु है ये इंद्रिय, क्योंकि जगत में हर स्थान पर इंद्रिय की सुख के लिए भोग के लिए सब साधन माया ने रखा है, हर जगह में कहां भी जाइए। अभी भोगने के लिए इंद्रिय को सुख मिलने के लिए पॉकेट में हम रखते हैं मोबाइल, पास आ गया, टेलीफोन करने के लिए लोग बाहर जाते थे, अभी कहां नहीं जाना पड़ेगा, पास में है माया बिल्कुल आ गया, भोग का साधन बिल्कुल माया ने फैला दिया है चार दिशा में। और हमको क्या करना है, हमको भगवत धाम जाना है। प्रभुपाद जी पहले स्टेटमेंट में ही लिखा है, जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है। जाने के लिए चिंता भी नहीं आ रहा है, मुंबई छोड़ने के लिए कोई चिंता किया है, जाने के लिए कोई इच्छा नहीं हो रहा है, क्यों, इतना साधन है भोगने के लिए, इतना साधन रखा है माया ने, इसमें मन बिल्कुल रम गया है। इधर सुख रहना है, सुख रहना तो इधर ही रहना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समस्या को समाधान करना है, और इस जगत में रहना है, ये बुद्धूपन है। पहला यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इस जगत को छोड़ना है, इसीलिए प्रभुपाद जी आए हैं हमको लेने के लिए लेने के लिए फ्लाइट लेकर आया है, लेकिन जाने के लिए कोई नहीं है, ये सत्य है। ये जो शत्रु है ना, राग, भगवत गीता में कई बार भगवान यही श्लोक को बार बार आवृत कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये पहला, ये भी इधर भी पहला आया, राग द्वेषः, राग का मतलब है आसक्ति प्रीति। ये जीवन में बहुत बड़ा बाधक है हमारे जीवन में, आसक्त हो जाना। घर छोड़कर हम आए हैं, जैसे गृहस्थ भक्त लोग अपना संबंधी छोड़ दिए हैं, पिता माता सब छोड़कर भक्त बनते हैं, क्यों भक्त बनते हैं,
क्या उद्देश्य है? क्या बाहर लोग जैसा कोई शो करते हैं आध्यात्मिक जीवन का, शो करते हैं, दिखाते हैं कि हम इसीलिए भक्त बने हैं, हमारा जीवन का इसीलिए है? नहीं नहीं, जीवन में हम आए हैं इस पथ पर, जीवन में सबसे बड़ा बंधन है आसक्ति, राग, क्योंकि ये अभी स्थूल शरीर है ना, इस शरीर में ये एक ही चीज करना चाहिए कि मरने के समय स्थूल शरीर काम नहीं करेगा, सूक्ष्म शरीर काम करेगा। और स्थूल शरीर में हम जो आसक्ति बढ़ा है ना, इसका रिफ्लेक्शन, प्रतिफलन बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं इसका जो प्रतिफल, प्रतिबिंब, परिणाम स्थूल शरीर में आएगा। ये मत सोचिए हम बुढ़ा हो जाएंगे तो हमारा आसक्ति चले जाएगा, ये बहुत बुरा स्टेटमेंट है। बुढ़ा होने से ज्यादा बढ़ता है आसक्ति, घटता नहीं है। ये कभी संभव नहीं होता है। इस शरीर में जब युवक है, जब साधन भजन करने के लिए क्षमता है हमारा पास, शक्ति है, समय है, तब एक काम करना है, आसक्ति को घटाने के लिए, राग को घटाने के लिए, भौतिक राग को घटाएंगे और आध्यात्मिक राग बढ़ाएंगे। आसक्ति बढ़ना चाहिए ठाकुर जी का ऊपर, आसक्ति बढ़ना चाहिए भागवत के ऊपर, ठाकुर जी की सेवा के ऊपर, नाम के ऊपर, तब तो वो स्वतः घट जाएगा। उसको घटाने के लिए दूसरा प्रयास करना नहीं पड़ता है। आसक्ति आत्मा का गुण है, अटैचमेंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कहा करते प्रभुपाद हर समय, आइदर यू हैव टू लव टू डॉग और गॉड। कुत्ता को प्यार करेंगे नहीं तो भगवान को प्यार, प्यार करना आत्मा का धर्म है, और शरीर का आसक्ति आत्मा का बंधन का कारण। प्रसंगम अजरम पासम आत्माना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मुख्य द्वारम अपावृतम। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव और माता देवहूति की यही बातचीत चल रहा है। प्रसंगम अजरम पासम, सिद्धर स्वामी ने अजरम शब्द पर इतना सुंदर व्याख्या किया है। अजरम आशिथिलम, शिथिल कभी नहीं होता है, शरीर शिथिल हो जाता है। बुढ़ापन आ जाता है, केस पक जाता है, गिर जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अजरम पासम जीर्ण नहीं होता है, शिथिल नहीं होता है। शरीर जीर्ण हो पर काल का यही शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति काल का नहीं है, वो सबको खा लेता है, शरीर को खा लेता है, लेकिन कामना को ग्रस्त नहीं करता है, खाने का शक्ति काल का भी नहीं। जो आसक्ति आ जाता है ना इस शरीर में, ये बहुत बड़ा बंधन। अजरम पासम जीर्ण नहीं होता है, अशिथिल पासम, एक ही उपाय से इसको जीर्ण कर हम कर सकते हैं, एक ही उपाय। क्या इस उपाय है? सैव साधु सुकृतो मुख्य द्वारम अपावृतम। मां जिन आसक्ति, जिन जिन आसक्ति ने जीवों को इस संसार में बंधन करके रखा है, जो अजर है, और यही आसक्ति साधु का ऊपर होना चाहिए। आसक्ति पहले ठाकुर जी का ऊपर नहीं होता है। कोई भी भक्त बना है, पहले कोई भक्त को प्यार किया है, कोई रास बिहारी को प्यार करके भक्त बना है, कोई कितना लोग आते हैं, कितना प्यार करते हैं, नाचते गाते, उसका बाद क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो फिर सिगरेट पी लेते, माया का भक्त हो जाते हैं। ठाकुर जी का भक्त बनने के लिए भक्त का भक्त पहले बनते हैं ना, भक्त का ऊपर आसक्ति बढ़ाना है, और यही ट्रेनिंग है हमारा। गुरु पूजा में आना, भागवत कथा सुनना, भक्त गुरु जी का ऊपर आसक्ति बढ़ाना है, ये सूत्र है। सैव साधु सुकृत मुख्य द्वारम अपावृतम, भगवान की भक्ति का ऊपर अगर हमारा आसक्ति नहीं बढ़ेगा, संसार की आसक्ति नहीं घटेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, आप परस्त हो जाएं। ये भक्ति जीवन में आप वापस चले जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, हटेंगे, क्योंकि इस जीवन में ठाकुर जी का ऊपर, गुरु जी का ऊपर आसक्ति बढ़ने के लिए पहला जो साधन है ना, वैष्णव लोग को प्यार करना है, गुरु जी को प्यार करना है, उनका ऊपर आसक्ति बढ़ाना है। राग, अरे गीता में ठाकुर जी बार बार ये बोले, राग द्वेष विमुक्ति सु विषयान इंद्रिय चरान आत्मवसे विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान की कृपा कब मिलेगा, कब रास विहार की कृपा मिलेगा? हम क्या कोशिश करते हैं ठाकुर जी की कृपा मिलने के लिए? कोशिश करते हैं क्या? कोशिश करने का रास्ता तो भगवान ने दिया है। इंग्लिश में एक शब्द है ना, स्टेरियोटाइप लाइफ। स्टेरियोटाइप क्या बोलते हैं हिंदी में, आप समझ लीजिए, यांत्रिकवत जीवन। यंत्र जैसा चलता है ना, बटन दबाओ जीवन चलता है। स्पिरिचुअल लाइक आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही नहीं, इसमें कोई स्वाद चाहिए। जैसे श्री गौर नित्य राधारास बिहारी जी, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज, बाहर की दुनिया में जो काम करते हैं ना लोग, उनका जीवन यही है। ऑफिस जाना है 10 बजे, 4 बजे वापस आना है, बस बीच में कुछ करना है तो कर लीजिए बस। वो करते कोई प्यार से करते हैं, पैसा के लिए करते हैं। स्टेरियोटाइप लाइफ, ऐसा जाना है, ऐसा आना है, ऐसा व्यवहार करना है। ये भक्ति जीवन ऐसा ही नहीं। भक्ति जीवन में हर पल पर हमको देखना है ठाकुर जी का ऊपर मेरा आसक्ति बढ़ता है कि नहीं, गुरु जी का ऊपर आसक्ति मेरा बढ़ता है कि नहीं। संसार में किसी का ऊपर आसक्ति आ जाता है ना, यह बहुत बड़ा नुकसान है। जीवन में बहुत बड़ा खतरनाक स्थिति है। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कब भगवान की कृपा मिलेगा? भगवान गीता में बोल रहे हैं राग द्वेष, पहले भगवान यही शब्द बोल रहा है राग, इधर भी पहले राग द्वेषस्य लोभस्य आसक्ति। इतना दिन हम भजन कर रहे हैं लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का ऊपर आसक्ति नहीं बढ़ रहा है। एक फिल्म रिलीज होता है, एक गाना निकल आता है, एक दिन में लोग का आसक्ति हो जाता है। देखिए ना, आप घूमते हैं फिरते हैं, वो गाना गाते हैं, रफी जो गाना गाया है अभी तक लोग उनका ऊपर इतना रम गए हैं, क्या बोलते हैं वो पैंट पहनते हैं ना, पैंट शर्ट पहनते हैं, उसमें वो चार दिशा में सब हवा जाता है, कपड़ा कितना गंदा कपड़ा है, लेकिन वो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, वो गाते गाते जाते हैं, देखा ना आपने, रम गए। अरे भाई, तो उनको तो कुछ ना कुछ स्वाद मिलता है ना। हमको तो भक्ति जीवन में भक्ति का कितना, भक्ति महारानी हमको कृपा करने के लिए देखिए कितना फैला है। श्रवण करो, कीर्तन करो, ठाकुर जी का सेवा करो, किसी में भी रम जाओ, भौतिक आसक्ति का हटाओ, लेकिन हमारा मन नहीं नमता है। राग द्वेष, पहले राग, ये जीवन में बहुत बड़ा सूक्ष्म सूत्र है। आसक्ति बढ़ाना है ठाकुर जी का ऊपर, गुरु जी का ऊपर। पहला राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रिय चरान, विषय का ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय का पीछे, इंद्रिय विषय का पीछे पीछे जाता है। अब हम छोड़ देते हैं, जाओ भाई तुम जाओ। मन बोलता है ना, ठीक है चलाओ, थोड़ा नेट चलाओ। अरे शरीर अविद्या जाल, एक नेट में है फिर एक नेट में, देखिए कितना बुद्धू हम है। एक नेट में है, पढ़ते हैं प्रसाद पाने पर है ना, शरीर अविद्या जाल, और फिर एक जाल खोलो नेट। यही तो दुनिया है, पढ़ते हैं घुस जाते हैं। राग आसक्ति हमको बढ़ाना है। भक्तिमय ठाकुर इसीलिए प्रार्थना किया, ठाकुर जी अगर आपका कृपा मेरा ऊपर है तो एक काम कीजिए, संपदे विपदे आमी ठाकुर क्षमा भावे, संपदे विपदे
आमी ताकुक सामा भा दीने दीने ब्रोधि हो ना मेरा प्रभावे दीने दीने ब्रोधि हो ना मेरा प्रभाव।
ये ठाकुर जी की दया, ठाकुर जी को यही प्रार्थना करते हैं प्रभु संपद जीवन में, सुख का दिन आएगा दुख का दिन आएगा ये आएगा, लेकिन ठाकुर जी मेरा यही प्रार्थना है दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभाव, चाहे सुख का दिन हो या दुख का दिन हो, नाम नाम का प्रभाव बढ़ना चाहिए, हमारा इंद्रिय का ऊपर नाम का प्रभाव रहना चाहिए, सेवा का प्रभाव रहना चाहिए, लेकिन हमारा इंद्रिय का ऊपर माया का प्रभाव ज्यादा है, भागवत पढ़ने के लिए इच्छा नहीं हो, ठाकुर जी का कीर्तन करने के लिए इच्छा नहीं होता है, सेवा करने के लिए इच्छा नहीं होता, इसका मतलब क्या है? भक्ति का प्रभाव नहीं, माया का प्रभाव हमारा इंद्रिय का ऊपर है, आसक्ति बढ़ गए, आसक्ति को बढ़ाना है, यही ट्रेनिंग तो कृष्ण चेतना और क्या है, भगवान के ऊपर गुरु जी के ऊपर गुरु जी की सेवा के ऊपर आसक्ति हमको बढ़ाना है। जिन भक्त लोग का चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, जिन भक्त लोग का ठाकुर जी का ऊपर मंदिर का ऊपर आसक्ति नहीं है, गुरु जी का ऊपर आसक्ति नहीं है, उन लोगों का भक्ति होना बिल्कुल संभव नहीं है, ये सत्य बात है। देखिए ना गृहस्थ जीवन में पहले लोग घर को अपना छोटा क्या बोलते झोपड़ी होता है ना, झोपड़ी का ऊपर कितना आसक्ति है, ये मेरा है, बाल बच्चे का ऊपर आसक्ति, तभी तो वो घर चलाता है ना, हम लोग का तो ठाकुर जी का ऊपर इतना आसक्त होना चाहिए, ठाकुर जी का घर है, प्रभुपाद जी का घर है, आसक्त बढ़ाना है। गीता में और एक श्लोक है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कमेंट्री दिए, इंद्रियस्य इंद्रियसार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोनो बसमागच्छेत् ह्यस परिपंथिनः। इसी का बस में हम नहीं रहना चाहिए, राग और द्वेष, राग द्वेष व्यवस्थित हो। इंद्र क्या करते हैं, इंद्र लोग का यही काम है, जिसको प्यार करते हैं उनका पीछे पड़ जाते हैं, और जिसको पसंद नहीं करते हैं उसका पर द्वेष आ जाता है, दोनों ही भक्ति का बाधक है, दोनों बाधक है, राग भी बाधक है और द्वेष भी बाधक है। सर्वेन्द्रियाणाम अर्थे सोसो विषय परस्त्री मात्र गात्र दर्शनम स्पर्शनम तत्संप्रदानम द्रव्यदानादो शास्त्र निषिद्ध अपि रागम। देखिए इंद्र लोक का क्या काम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये परपट में लिख रहे हैं तात्पर्य, दूसरा पुरुष ने दूसरा कोई स्त्री को दर्शन करना, स्पर्शन करना, कुछ देना, उनको कुछ देना, कोई आलापन करना, संप्रदान इसको बोलते हैं, ये निषिद्ध है, शास्त्र निषिद्ध, द्रव्यदानादो कुछ नहीं देना लेना है हमारा, ये शास्त्र निषिद्ध करता है, लेकिन उसका ऊपर हम आसक्त आता है, ये राग, राग किसका ऊपर, जिसका ऊपर आसक्ति होना चाहिए इसका ऊपर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए उसका ऊपर होता है। गुरु विप्रा तीर्थ अतिथि दर्शनम स्पर्शनम परिचरणम, गुरु जी को दर्शन करना, वैष्णव लोग को दर्शन करना, स्पर्श करना, सेवा करना, अतिथि का तत्संप्रदानम धन वितरण आदो, उनको सेवा करना, उसको कुछ धन देना, शास्त्र विहित अपि द्वेष, शास्त्र यही बोलता है ये करो, लेकिन ये हमारा पसंद नहीं होता है, जो शास्त्र निषिद्ध करता है ये मत करो, परस्त्री उसके साथ आलाप मत करो, लेकिन राग इंद्र इसी का ऊपर आसक्ति रखता है, और शास्त्र जो बोल रहे हैं ये बंधन है। सो पुत्रादि दर्शन है श्रवणादो राग, अपना छोटा बच्चा है ना वो कुछ बोलता है, तोतली बोली बोलते हैं ना, तोतली बोली बोलता है बहुत अच्छा लगता है, और कोई शत्रु का पुत्र बैरी पुत्र आपका शत्रु का पुत्र है, वो कुछ बोलता है द्वेष आता है। आसक्ति और द्वेष दोनों ही जीवन का, आप भागवत में सुना है ना पूर्वा का चरित, कितना बड़ा महान भक्त था। अरे स्वर्गपुर में इंद्रलोक में सिर्फ चर्चा नारद मुनि कर रहे थे। नारद मुनि जैसे, नारद मुनि जैसे भक्त राजा पूर्वा का गुणगान कर रहे थे, कहां इंद्र के सामने। अरे नारद जैसे फर्स्ट क्लास डिवोटी, वो जिसका गुणगान करेगा, जैसा ध्रुव का प्रहलाद का नारद मुनि गुणगान कर, उनका शिष्य का गुणगान कर रहे थे। यही तो गुरुजी का जीवन का धन्य है। गुरुजी खुद को धन्य मानते हैं जब ऐसे शिष्य मिल जाते हैं। चाणक्य पंडित ने मना किया है, बरंग न शिष्य कुशिष्य शिष्य, कुशिष्य को शिष्य नहीं कर, आपका बाल बच्चा कुछ नहीं है ये तो बहुत अच्छा है। अगर कोई बाल बच्चा है बात नहीं मानता है तो क्या है, मर जाना तो अच्छा है, संन्यास लेना ठीक है गृहस्थ जीवन से। शिष्य ऐसे है, कोई नहीं आपका तो ठीक है, और शिष्य है तो बात नहीं मानता है, मरने से भी वो बहुत बड़ा जंत्रणा है। बरंग न शिष्य कुशिष्य शिष्य, बरंग न भारिया कुभारिया भारिया, शादी नहीं करना चाहिए, कुभारिया न भारिया, असत्य नारी को कभी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। दिन रात बस रोते 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 कहां रोएंगे, आंख में आंसू नहीं आएगा, भीतर रोते हैं, किसी को बताएंगे। इतने यही शिष्य का गुरुजी का संपत्ति थे नारद मुनि का, वो खुद गुणगान कर रहे थे पूर्वा का। अरे रूपसी ने सोचा, अरे शादी करना है तो किसी को करना है, ब्रह्मचर्य को करना है ना, और किसको करना है। माया इसीलिए आता है ना, पता है ना वो शराब नहीं खाएगा, ये एक पॉजिटिव है, छोड़ेगा भी नहीं, शास्त्र नियम उनको पता है। और उर्वशी ने सोचा मेरा ऊपर तो अभिशाप है, अभी पूर्वा भी ब्रह्मचारी लोग हैं ना, और भक्त भी है, ये भक्त गुण पर बहुत रम गया, भक्त को पकड़ना आसानी होता है, चाहे बाल मुंडन आप कर दीजिए काट दीजिए, माया का छोड़ता है, माया पीछे लग जाता है, उनको पता है उनका स्वभाव भक्त है, उनको पकड़ लूंगा ना। जीवन भर नचाने के लिए आसान होता है, और कर्मी ये मदिरा पी कर आएगा मुझे भी नचाएगा ना, और बहुत उर्वशी ने सोचा ये ठीक है, मेरा जो पीरियड है ना अभिशाप का जो समय है उसको काटने के लिए मैं पूर्वा, जो पूर्वा भक्ति में रम रहे थे उसका जीवन बिल्कुल राग आसक्ति से, उर्वशी को दर्शन कर लिया, स्पर्श कर दिया, संग कर दिया, बदल गए। इस जगत में गिरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यह हर समय हम सोचना चाहिए, गिरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा भजन करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, और भोगने के लिए एक मिनट बस, इस्कॉन मंदिर से बाहर जाओ तिलक मोच लो बस हो गया तुम, ऊपर उठने के लिए थोड़ा परिश्रम करना होता है। हम आलसी हो गए ना, इसीलिए इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। अरे यही तो साधन है, राग द्वेष पूर्वा में दर्शन करने। और जब उर्वशी जा रहे थे उन्मत्तवत, भागवत में लिखा है तच्चेता विहोलम, रो रहे थे उर्वशी, तुम कहां गए हो कहां गए, जो ठाकुर जी के लिए रो रहे थे पूर्वा, इतना बड़ा भक्त थे। भक्ति में जिस पूर्वा का चित विहल हो जाते थे, अभी उर्वशी के लिए उन्मत्तवत पागल जैसा, पागलपन विषय भोगना एक पागलपन है। कामा तुराम नभयतन राज्या, टीका में आचार्य लोग ने नीति में लाकर रचना किया है, कामातुरानम ना भयम ना लज्जा, जो काम में आतुर हो जाते हैं उनको डर नहीं लगता है, मैं भक्त हूं, मैं इतना बड़ा घर का आदमी हूं, कुछ नहीं, भय डर नहीं लगता, रास्ता में नंगा घूमता है, देखे ना आप, डर नहीं, ना लज्जा, लज्जा भी नहीं लगता, शर्म शर्म भी नहीं लगता, काम आतुरा ना, आतुर हो गए काम में। अरे इन्होंने ही उपाय दिया है, अहिले गीता भगवान एकादश स्कंद में बोला है ना, पूर्वबाजी जब वानप्रस्थ हो गए, अरे गीत गाए, उसको अहिले गीत बोलते हैं, और अहिले गीत ठाकुर जी ने खुद बोला उद्धव को, सुनो उद्धव पूर्वबा क्या गान किए थे, और उसका कंक्लूजन दे रहे हैं, जो हमको जीवन में, हमारा जीवन में आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या साधन है, हमको पता नहीं चलता है, 10 साल 20 साल 25 साल मंदिर में अब बिता दिए ना, आपको पता नहीं चलता है, काल जैसा लगता है, मैं एक दिन का पीछे आया, दो दिन ऐसा लगता है। जब विषय में, इंद्रिय विषय में भोगने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब पता नहीं चलता है टाइम। अब भजन करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मोबाइल में, नेट में 5 घंटा बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन 2 घंटा भजन, वो 2 घंटा हो गया, वो पता चलता है, भजन का टाइम पता चलता है, भोगने का टाइम पता नहीं चलता है, आविश रहता है ना। ये बहुत बड़ा बड़ा भक्त लोग का पतन होगा ये आसक्ति से, बहुत बड़ा बड़ा। और भगवान ने यही बोला है, आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, भौतिक आसक्ति घटाना चाहिए, और ठाकुर जी के ऊपर आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ततो दुसंग उत्सृज्यम सत्स सज्जे तु बुद्धिमान संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति विहीन ततो दुसंग उत्सृज्य सत्स सज्जी सुबुद्धिमान। जो बुद्धिमान आदमी है, जो बुद्धिमान भक्त है, उनको 2 काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 2 संग छोड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा बात नहीं है, बहुत आदमी है 2 संग नहीं करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, दूसरे के पीछे नहीं पड़ते हैं, वो बोलते हैं हमारा ड्यूटी हम करते हैं, ड्यूटी इज गॉड, क्या वो 2 संग करते हैं, अपना कर्म करते हैं, पैसा लाते हैं, घर में रहते हैं, नहीं इसी में भी भलाई नहीं हो, फिर भी आ सकती है फिर भी आ सकती है। भागवत ये नहीं बोलता है कि दुसंग छोड़ दो, नहीं, दुसंग छोड़ना है, फिर ततो दुसंग उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। दुसंग छोड़ते छोड़ते ही सत्संग पकड़ना है, इसको छोड़ना है और एक को पकड़ना है, सज्जेत, सज्जे का मतलब आपको सटे रहना, पीछे पीछे रहना है, साधु संघ के पीछे पीछे रहना है, साधु लोग के पीछे पीछे। तो आसक्ति, साधु का पीछे रहने से आसक्ति कैसे जाएगा, ये प्रश्न आएगा ना। मनो व्यासंग उक्ति भी, साधु खुद का वचन में जो वो आसक्ति को काटेंगे, साधु का वचन 80 है, 80 बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, तलवार, ज्ञानासी। गुरुजी का जो वचन है इसको श्रवण करके हम संसार का आसक्ति को काट सकते हैं, नहीं बड़ा बड़ा मुनि ऋषि के लिए भी ये संभव नहीं है, आसक्ति बढ़ते जाएगा। ये विष्णु पुराण में एक ऋषि का चरित है, कंडू ऋषि, कंडू उनका नाम है, बहुत तपस्या थी, और गोमती गोमती नदी है ना, गोमती नदी का पास में तपस्या कर रहे थे कंडू ऋषि ने, बहुत बड़ा तपस्या थी, और इंद्र को डर लगा, कोई तपस्या करते है ना तो पहला डर इंद्र को हो जाता है कि मेरा पुष्ट के लिए ये कर रहे हैं, किसी के लिए करो या नहीं करो, पद भी है ना, जिसका जो ऊपर उठा है वो डरता है, जो नीचे है उनका कोई डर नहीं, और गिरेंगे तो उधर ही गिरेंगे, ऊपर वाले तो गिरेंगे तो नीचे गिरेंगे ना, तो जो नीचे है उसका गिरने से क्या होता है, तो इंद्र को डर लगता है। उन्होंने प्रम्लोचा, एक अप्सरा है बहुत सुंदरी है, प्रम्लोचा उनको भेज दिया तुम जाओ पतन करा। देखिए आसक्ति राग ये जीवन में कितना बड़ा बाधक है। उर्वशी अयल गीता में पूर्वा ने यही बताया है, कितना दिन कितना रात चला गया मुझे पता नहीं। विषय भोगने में दिन रात चला जाता है पता नहीं चलता है। 2017 भी है ना, ये भी चला जाएगा, फिर कितना जाएगा कितना आएगा कितना पता नहीं चलता है, इतना आवेश रहता है। खुद ने बोला है पुर्रवा ने, इतना आसक्त। कंडुमुनि तपस्या कर रहे थे तो प्रम्लोचन आया तो उनका नाटक दिखाया और कंडुमुनि ने बोला ठीक है तुम कुछ देने के लिए मेरे आश्रम में ठहरो। यही भक्त जीवन में सबसे बड़ा बाधक है, पता है ना आपको भरत महाराज की चरित्र क्या सीखा है इसमें, यही सीख्या है, सबसे बड़ा सीख्या यही है। प्रभुपाद जी ने एक सुंदर स्टेटमेंट बहुत सुंदर, कभी कभी सत्तो गुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। रजगुण तो बंधन के कारण है, ये तो रजगुण का गुण, हम तमगुण से ही सृष्टि, सत्वगुण भी जीवन का बंधन का कारण है। और प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिखा है, त्रैगुण्य विषय आवेदा नैगुण्य भव अर्जुनम। अर्जुन को इसलिए बोल रहे कि तुम निर्गुण स्थित में स्थित हो जाओ। एकादश स्कंद आप पढ़ेंगे ना, उधर आप निर्गुण क्या क्या है उसे पता चलेगा, सत्व ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान क्या है। मत निष्ठ तो निर्गुणम, भगवत ज्ञान भगवान का ऊपर निष्ठा ही निर्गुण ज्ञान है। बन तो सत्य को वासम, जो बन में रहता है वो सतगुण है। ग्राम राजसह, ग्राम में राजसिक भाव रहता है। तामस द्यूत सदनम, मुंबई दिल्ली, ये तामस स्थान है। हम कहां रहते हैं, हा? मंदिर में रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं, हम मंदिर में रहते हैं। मत्स्थान तो निर्गुणम भगवान बोल रहे हैं, ये मत्स्थानम ये निर्गुण है। ठाकुर जी जहां भगवान ये बोल रहे हैं उद्धव, मत्स्थान तो निर्गुणम, जहां मेरा पूजा आराधना हो रहा है ये निर्गुण स्थान। ये एकादश स्कंद में हमको निर्गुण स्तर को जाना है, निर्गुण भक्ति करना है। सत्व गुण भी बंधन का कारण होता है। जथा भरतस्य मृगबाल का कृपा सत्विकमापि शत्रुएव जातः। भरत महाराज क्या थे, भक्त थे कि नहीं, जो हो जुबे व मलावत उत्तम श्लोक लालसा, इतना बड़ा राजा थे जुबक की जौवन के समय, युवक पर मलवत, मल जैसा त्याग करते हैं बहुत आराम मिलता है। सब छोड़कर चले आए तुल्हा आश्रम, सालग्राम क्षेत्र में भजन करने के लिए। उत्तम श्लोक लालसा, ठाकुर जी का ऊपर इतना प्यार आया। और आप भागवत पढ़िए, ये कथा चल रहा था भुवनेश्वर में इस साल, पूजा का व्यतिक्रम हो रहा था, क्रम भंग हो रहा था। जैसे हमारा पुजारी भगवान लोग सेवा करते हैं ना, क्या करते हैं, धूप उसके बाद दीप देते हैं ना, भरत महाराज ऐसा नहीं करते हैं। धूप देने का बाद वो सब क्रम में फिर सोचते हैं धूप नहीं मैं अर्चन नहीं किया हूं, अर्चन कर लिया है। मन में इतना उच्च स्तर पर मन में वो थे, अर्चन करके धूप वगैरह, अरे मैं तो अर्चन नहीं किया हूं। कभी कभी चामर वगैरह देने का बाद सोचता है, अरे मेरे धूप नहीं दिया, धूप दे चुके हैं। क्रम भंग हो रहा था, इतना प्रेम स्थित में थे। भावुक स्थित में थे। क्या हो गया? इस सात्विक कृपा का यही फल है, हिरण शावक का ऊपर आसक्ता। ये शिक्षा हम लोग कहे दया करना है, आसक्ति नहीं बढ़ाना है। हम लोग दया जिसको करते हैं उसका ऊपर, उसका पीछे पीछे, अरे मैंने इसको दया किया प्रभु जी आप अच्छा है ना, जब करते हैं ना लगाते 10 बार फोन, खुद का 16 माला कंप्लीट हुआ कि नहीं पता नहीं चलता है, लेकिन उनको भक्त बना है ना दया था। अरे 16 माला जब किए हैं आप, वो फोन नहीं कर, प्रभु जी आपने किया है 16 माला, वो करना चाहिए तब तो उसका ज्ञान आएगा। कभी कभी ये चक्कर में फंस जाते हैं ना, दया करते हैं और आसक्त हो जाते हैं। कई भक्त, ये भरत महाराज का जीवन हमको हमारे लिए सीखा है, दया करना है लेकिन आसक्त नहीं होना है। किसी को भक्त बनाते हैं उनका पीछे दया आ जाता है। पशु इतर, ये पशु आती है ना, इसीलिए जड़ भरत शरीर में बहुत डरते थे, किसी का संग नहीं करते थे। और भागवत में यही सुंदर शब्द उन्होंने ही बताया है राजा रोहन को, क्या करना चाहिए आसक्ति से राग से बचने के लिए, क्या करना चाहिए। तस्मात् मनरो संग सुसंग यातम ज्ञानासिनैव विकृणन् मोहम हरिं तदीहा कथनं श्रुताभ्याम लब्धा स्मृति जाते अति पारमध्वन। तस्मात, तुमने देखा है ना, सुना ना, मैं वही भरत था, राजा था। वो पूछा, पहले पूछा, आप कौन है, इतना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, अगर हमको कौन पूछेगा आप कौन है, हम पहले क्या बोलते हैं, हमारा एड्रेस देते हैं ना, मैं ऐसा हूं इसकन का महाराज हूं। नहीं नहीं नहीं, भरत महाराज ऐसा नहीं बोला, आप कौन है। वो इस अवस्था का शरीर का परिचय नहीं दे रहा है, जड़ भरत का शरीर परिचय नहीं दे रहा है। अहं पुरा भरतो नाम राजा, आपको पता है ना मैं वही भरत राजा हूं। अभी ये भरत शरीर का नहीं है, आप कौन है पूछ रहे हैं। अहं पुरा भरतो नाम राजा, मैं वही पिछला जन्म बता रहा है, इस जन्म का एड्रेस वो पूछ रहा है, उनको पिछला जन्म का एड्रेस दे रहा है। अरे तुम सुनो, आप वही भरत राजा है जिसका नाम पर भारत वर्ष हुआ है, आप गुंगा जैसा क्यों घूम रहे हैं, नंगा होकर गुंगा जैसा क्यों आप घूम रहे हैं। नहीं, मृग संगार्धम मृगो अभवन, मैं मृग का संग करके, हिरण का संग करके मेरा मृग शरीर हो गया, इसलिए मैं किसका संग नहीं करता। तो आप संग नहीं करते, आप जी जाएंगे, मैं जीऊंगा कैसे। अगर रहुगण प्रश्न करेंगे, मैं तो राजा हूं ना, एक शिष्य बनाया, दूसरा जड़भरत बना लिया, जड़भरत ने दूसरा जड़भरत पैदा कर दिया, एक दो प्रवचन में बस राजा रहुगण में वन में चला गया, ये आसक्ति कट, उधर ही चला गया वन में, और कपिल आश्रम नहीं गया। ये ज्ञानासी साधु का पास ऐसा खड़ग है, अस्त्र है, साधु का पास भी तलवार है ना, ये तलवार लेकर चलता है। साधु का तलवार क्या है, शास्त्र तलवार है, शास्त्र उनका तलवार है, सबको काटेगा। तलवार नहीं तो युद्ध करना संभव नहीं, साधु का पास यही तलवार रहना चाहिए। खुद का आसक्ति को मिटाएगा और दूसरा आसक्ति को काटेगा। व्यासंग मुक्ति भी, जीव का जो आसक्ति उड़ता है ना भोग करने के लिए, उसको काटता है साधु। और दो शब्द, तस्मात राजा रहोगण, तुम सावधान से सुनो, तुमको क्या करना चाहिए। तस्मात नरो असंग सुसंग जाता, दो काम करना है हमको, असंग रहना है और सुसंग करना है। कितना सुंदर शब्द भागवत में लिखा है, असंग रहना है, असंग ना, अशब्दक ना लगता है, ना संग, दूसरा का ऊपर कभी आसक्ति नहीं बढ़ाना। मैंने बताया पिछले बार जब आया था ना, घृणा द्वेष नहीं करना चाहिए, लव फॉर ऑल हार्ट फॉर नन, जो लिखते हैं ना बैनर में युवक लोग, लव फॉर ऑल हार्ट फॉर नन, द्वेष नहीं करना, सबको प्यार करना चाहिए, लेकिन आसक्ति किसका ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए, आसक्ति सिर्फ गुरुजी और कृष्ण का ऊपर बढ़ाना चाहिए, वैष्णव लोग का ऊपर, यही हमारा ट्रेनिंग है। असंग करना है और सुसंग, असंग में रहना है और सुसंग करना है साधु का संग करना है लेकिन असंग में रहना है, दो काम है, हमारा उल्टा हो जाता है, कुसंग और सुसंग दोनों भी होता है। भागवत में सुनते हैं और संसार वार्ता भी कुछ सुनते हैं, लगा देते हैं ना। युधिष्ठिर महाराज ने क्या खेला था, पासा बोलते हैं ना हिंदी में, पासा, अभी भी हम पासा चलाते हैं ना, पता है ना, पता नहीं है आपका पास है ना एक पासा, लगाते हैं ना वही तो पास, और क्या है, ये असंग है। एक भक्त ने मुझे पूछा तो भक्ति कैसा बढ़ना चाहिए, तो मुझे यही अनुमान हुआ, तो मोबाइल छोड़ देना ही भक्ति है आजकल कल युग में, मैं उसको बताया साफ, इसको छोड़ दो तो भक्ति हो जाएगा, क्योंकि असंग, ये बुरा आप मत सोचिए, आप नहीं चाहते हैं फिर भी कितना बात आ जाएगा, इस असंग हो जाते, असंग में रहने को नहीं देते हैं, चिंतन करने को नहीं देते, भजन कर रहे हैं ना, ये क्या होता है, और कुछ नहीं है तो नहीं है बस, असंग, असंग होना है और सुसंग करना है तब तो फायदा मिलेगा। ये भरत महाराज का जीवन में बहुत बड़ा खुद का जो अनुभव पेश कर रहे हैं महाराज रघुगण को, यही अनुभव के आधार पर ही महाराज रघुगण ने कपिल आश्रम नहीं गया, राजधानी को वापस नहीं आया, वो तो सेकंड जड़भरत बन गया बस एक प्रवचन में, मैं कंडरूसी का बात बोल रहा था ना, उधर चला आया। जीवन में आसक्ति कैसा चक्कर में फंसा देता है, पता नहीं चलता है टाइम कैसा जाता है, चला जाता है कहां। कंडरूसी तपस्या कर रहे थे, वो तो गए प्रम्लोचा ने थोड़ा तमाशा दिखाया, वो तो बोला ठीक है, तो इतना दिन से मैं भजन कर रहा हूं तो कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी शायद आपको भेजा है कोई स्वाद के लिए कभी कभी भक्त लोग ये मान लेते हैं ये ठाकुर जी की इच्छा है 10-20 साल रहने का बाद कभी कभी ब्रह्मचर्य, मुझे बड़ा मत सोचिए, मैं खुला आदमी बोल देता हूं सब जगह में, आज तक केस कोई मुझे नहीं डाला है केस में, चलता है तो चलता है, जब रुकावट हो जाएगा तब तो देखूंगा। कभी कभी ब्रह्मचारी लोग यही सोचते हैं 10-20 साल का बाद, एक ब्रह्मचारी ने मुझे भुवनेश्वर में पूछा 20 साल रहने का बाद, नहीं मैं ठाकुर जी को बहुत प्रार्थना किया, मेरा अभी इच्छा है ठाकुर जी का यही इच्छा है कि शादी करना है, मैं बोला ठीक है ये ठाकुर जी का इच्छा है तुम्हारा, जब तुम्हारा मां रो रहे थे मैंने खुद देखा है, मां आकर इधर रो रहे थे, तुमने बोला नहीं मैं घर मर जाऊंगा घर नहीं जाऊंगा, उस समय किसका इच्छा था, घर छोड़कर जब आए किसका इच्छा पर आए, तुम्हारा इच्छा पर आए, उस समय तुम सोचते ये ठाकुर जी का इच्छा है, जो ठाकुर जी ने तुमको लाया था माया की गोद में, अभी वो माया का गोद को आपको भेजेंगे, ठाकुर जी का इच्छा बोलते हो तुम, गद्दा, ये गद्दा होता है, भुगने का इच्छा आता है वो सोचता है नहीं नहीं ठाकुर जी का इच्छा है, क्या ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी कभी नहीं सोचते हैं, जन्मोलम कर्म बंधनम, आप बुरा मत सोचिए, जीवन में घर गृहस्थ जीवन कर्म का बंधन का मूल है, भागवत यही बोलता है। हम ऐसा गृहस्थ स्टैंडर्ड में है क्या, कोई पति पत्नी ऐसा स्टैंडर्ड अकेला है, सोलोमाला भजन करना कितना मुश्किल हो जाता है, साइड में क्या है साखीमाला है ना, साखीमाला बोलते हैं ना हिंदी में, वो कितना चिकन हो गया आपको पता चलता है ना, पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़, तो जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ या ऊपर उठो, साखी माला को गिनते हैं ना, माला जितना गिना नहीं होता है, साखी माला को उतना बार देखते, अगर भगवान बीच बीच में वो नीचे ले आएंगे ना, हमको आसानी हो जाएगा। ठाकुर जी हम जब जब करते हैं ना, दो चार माला नीचे ले आएंगे तभी तो हम सोचेंगे ये अच्छा है। ठाकुर जी इतना भजन में कुछ नहीं है, कोई कोकिंग पुणे में उन्हें निगड़ी में बोल रहा था मैं ये बात। ठाकुर जी कभी कभी हमको ज्ञान देते, हम पढ़ाई लिखाई आदमी इतना नहीं है। देखिए साधन करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये लिखा है इस श्लोक पर असंग सुसंग में, वी आर गिविंग शेल्टर टू एवरीवन हु इज सीरियस अबाउट प्रोग्रेसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में लिखा रहे, जो कृष्ण चेतना में अग्रगति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मैं सब व्यवस्था कर रहा हूं। वी आर अरेंजिंग फॉर देयर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, ये लिख रहे। इतना सुंदर स्थान पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, हिंदी में क्या, रहना और खाना, खाना फर्स्ट क्लास रहना और फर्स्ट क्लास खाना, क्या फर्स्ट क्लास लगाना चाहिए, लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज प्रॉपर, सो दैट दे कैन पीसफुली कल्टिवेट कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड रिटर्न बैक टू होम बैक टू गॉडहेड इवन इन दिस लाइफ, इवन इन दिस लाइफ। प्रॉपर बोल ये फैसिलिटी प्रॉपर दे रहे, लॉजिंग एंड बोर्डिंग रहने के लिए। ये क्यों प्रभुपाद जी ने इतना व्यवस्था की? कोई मार्केटिंग करता है पता नहीं है, सब्जी का भाव कितना है पता नहीं है। हर दिन देखिए प्रसाद, अभी कितना बजे प्रसाद, 9:30 बजे प्रसाद बस, और डिस्ट्रीब्यूट एक करेंगे हम, सिर्फ पता पता फैलाएंगे, और महाप्रसाद गोविंदे बोलने के लिए भी हिचक होता है, फिर एक आदमी बोल लेता है, इतना फैसिलिटीज है। मैं निगड़ में बोला, देखिए महाप्रसाद अकेला कोई भजन करता है ना, कभी कभी महाप्रसाद गोविंद उसको भी छोड़ देता है, इसीलिए संघ में भजन करो। एक गान करेंगे महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म, तब एक गान कर लेंगे पीछे पीछे तुम थोड़ा भी ज्ञान कर लेंगे, इतना फैसिलिटीज है फिर भी भजन नहीं होता है। और घर गृहस्थ में जाकर सुबह सुबह उठते हैं ना, सब्जी है क्या, ठाकुर जी का अर्चन है कि नहीं ये पता नहीं चलेगा, पहले सब्जी है क्या है, उधर भजन होता है। जो समर्थ पुरुष है वो भजन करेगा। हाँ हमारा जैसा आसक्त पुरुष कलयुग में गृहस्थ जीवन में भजन करना बहुत मुश्किल है। हमारा गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, बहुत जन्म तुमने शादी की हो, इस जन्म में शादी ये कारोबार बंद कर दो, ये बिजनेस बंद करो, यही बोलते हैं। और पति पत्नी दोनों गुरुदेव का शिष्य है, गुरुदेव बोलते हैं माया का क्यों भजन करते हो, इधर आ जाओ। अरे पत्नी जब पत्नी उनका शिष्य है तब भी बोलते हैं नहीं नहीं माया को छोड़कर इधर आओ, माया को छोड़कर इधर आओ। अरे माया हमारा मन में है ना, माया हमारा मन में है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें कमेंट्री में दिया, ये जो जय करना है इस शत्रु लोग को, जथाचो स्वयंवर कन्या प्राप्ति प्रतिबंधक दृष्ट राजानं बलिष्ठेन हन्यन्ते तथैव भगवत भक्ति बलेन जतिनं ज्ञानासीमादाय राग द्वेषाय हन्तव्यः। कितना सुंदर उपमा दिया है। राजकन्या स्वयंवर होता है ना, जैसा कोई राजा दूसरा राजा को परास्त करके कन्या को लेकर आता है, इससे हमको शादी करना है कृष्ण से, हमको परास्त करना है। ये जो राजा लोग, ये राजा जैसा राग द्वेष उसको परास्त करना है, लेकिन बल चाहिए, कहां से बल, भक्ति भगवत भक्ति बलेना, भगवान की भक्ति के बल पर। जति ना ज्ञानासीमादाय, सन्यासी लोग त्यागी लोग ज्ञान जो असी है उसको पकड़कर राग द्वेषाद हंतव्यः, राग द्वेष लोभ जितना ही है उसको मारना चाहिए। बल चाहिए, हमको बल चाहिए, कृपा बल चाहिए। योग्यता बिचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सार, यही हमारा बल है, यही बल पर हमको परास्त करना है क्षत्रियो को। कंडरुषि का बात में बोल रहा था ना, तो कंडरुषि ने बोला कि प्रमलोचा तुम कुछ दिन ठहर जाओ, मेरा जीवन शुष्क हो गया है तपस्या करके। कभी कभी अरे तपस्या जीवन शुष्क है, भक्त जीवन शुष्क नहीं है, भक्त में रस मिलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना सुंदर लिखा है भक्ति का आधार पर, साधन भी रस है। साधन अगर ठीक ठीक साधन करेंगे इसी में भी स्वाद आएगा, और सिद्ध साध्य प्राप्त प्रेम प्राप्त कर लेंगे ये भी स्वाद है। भले साधन मंगलारती आना जप करना ये साधन थोड़ा कष्ट लगता है, लेकिन इसमें स्वाद है, स्वाद है, सुख है। तपस्वी जीवन में कुछ सुख नहीं है, इसीलिए बोला कि प्रम्लोचा तुम कुछ दिन ठहर जाओ। वो बोला ठीक है, इंद्र ने इसीलिए तो भेजा है, आप तो कोई अभिशाप नहीं दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, ठीक है मैं रुक जाऊंगा। जब प्रम्लोचा बोलते कि मुझे जाना है डेवलप, तब बोलते नहीं नहीं तुम आज आया, क्यों जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, रुक जाओ कुछ दिन ठहरो, कुछ दिन ठहरो। कंडू ऋषि ने कुछ दिन बोल के कितना दिन प्रम्लोचा का पास रहा खुद को पता नहीं चला। तो एक दिन सूर्यास्त होने जा रहे थे, कंडू ऋषि ने बाहर आया तो प्रम्लोचा ने बोला कहां जा रहे हैं आप? मैं संध्या वंदना करने के लिए जा रहा हूं, सूर्यास्त हो रहे। प्रम्लोचा ने बोला कि क्या आज आपके लिए सूर्यास्त हो रहा है? हर दिन हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, कंडू ऋषि ने पूछा तुम कब आए, तुम आज आए ना, 900 साल बीत गए। तब प्रम्लोचा ने, उनका पास शायद कोई मोबाइल वगैरह कुछ होगा, वो कैलकुलेट करके बताया 900 साल 6 महीना और 3 दिन हो गया मैं आया। तब उन्हें गुस्सा आ गया, इतना दिन तुमने मुझे बंधन में रखा, मैं तुमको बंधन में रखा या तुम मेरा बंधन में आ गए? तुम सोच रहे हो आज सूर्यास्त हो रहा है, 900 साल चला गया। मेरा कहने का यही उद्देश्य था कि राग आसक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है मुनि ऋषि का ऊपर, जो तपस्वी का ऊपर। हम लोग को इस जीवन में कृष्ण जो भक्त होता है ना, भगवान की जो भक्त होता है ना, उनका जीवन में एक टैक्स है, यही टैक्स है आसक्ति बढ़ाना। नाम का, चाहे नाम का ऊपर हो चाहे सेवा के ऊपर हो, जिसमें मन लगता है ना ठाकुर जी की सेवा में उसमें लगा देना चाहिए, तब निर्गुण अवस्था आएगा। भगवत सेवा निर्गुण है, सत्व कर्म क्या है, राजसी कर्म क्या है, तामसी कर्म क्या है, ये निर्गुण है। इधर झाड़ू वगैरह लगाना ये भी निर्गुण कर्म है, भगवान की कर्म है। नहीं तो ये शत्रु हम लोग को परास्त कर देंगे, ये शत्रु है ना परास्त कर देंगे। और वैकुंठ धाम जाना हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं। तो इसलिए सेवा में रहना चाहिए, सेवा सेवा। हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं? सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तो अधिकार मंगलारती में भी मांग रहे हैं, थोड़ा सेवा दो। और ज्यादा थोड़ा सेवा हो गया, मुझे क्यों आप सेवा में लगा रहा है, वो तो घूम रहा है प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखा है, मैं पढ़ा था कन्वर्सेशन में, प्रभुपाद जी ने ये बताया, वही सेवक है उनको सेवा प्रदान नहीं किया जाता है, वो खुद ही सेवा करता है, उनको ही सेवक बोला जाता है। खुद इधर ही झाड़ू लगाना है, ये साफ करना है, ये करना है, वो करना है, उनका सामने सेवा, बहुत सेवा है मंदिर में। जिसको बोलने से सेवा करते हैं वो सेवक नहीं है, बोलने से तो पशु भी करता है। आपको पता है ना बैल को क्या करते हैं, खेती करते हैं, बैल को लेकर जो खेती करने वाले क्या बोलते हैं बैल को, वो डहाने वाले, घुमाओ घुम जाओ घुम जाओ। वो मनुष्य का ये भाषा है, उसका पकड़ में किसे आ जाता है, वो भी घूम जाता है, डहने घूमो डहन घूम जाता है, बाम घूमो बाम घूम जाता है। पशु भी बोलने से कर देता है, हम अगर हमको बोलने कोई सेवा करो तो कर दिया, कोई बड़ा काम कर दिया हमने, नहीं ये बड़ा काम नहीं है। सेवा प्यार से करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने आप पढ़िए हर साम लविंग सर्विस एडजेक्टिव एक सेवा प्रेम से करना चाहिए, तब तो आसक्ति ठाकुर जी का ऊपर आएगा। ठाकुर जी का ऊपर आसक्ति आ जाएगा तो इन लोगों का पीछे हमको भागना नहीं पड़ता है। ये तो बिल्कुल दूर दूर चला जाएगा। राग द्वेष लोभ ये तो बहुत बड़ा तात्पर्य होगा। ठीक है, मैं इधर ही कथा को विश्राम देता हूं। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रवचन दिया आपने। आपने बताया कि जैसे सेवा के बारे में, तो जब हम भक्ति में नहीं होते हैं तो बाहर सुख दुख चलता रहता है संसार का, और कोई भक्त आके प्रचार करता है और हम एक माला करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद पाते हैं, भगवान को एक बार दर्शन करते हैं महीने हफ्ते में, तो आनंद मिलता है और उसी को बढ़ाते 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 हम पहुंच जाते हैं 16 माला पे, दीक्षा ले लेते हैं, कोई मंदिर ज्वाइन कर लेता है, कोई गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि वापस पीछे आ सकती जाता है, फिर सेवा में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, जो एक माला में आनंद मिल रहा था आज 16 माला में वो आनंद नहीं मिल रहा है, ये पीछे क्यों जाता है वापस?
हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले देखिए, एक माला में आनंद मिल रहा था, एक माला छोड़ दीजिए, कभी कभी संध्या आरती में आ जाते हैं ना, कीर्तन करते हैं भक्त लोग, भक्त लोग का कीर्तन दर्शन करके भी आनंद लगता था। संसार में क्या है, उधर बहुत दुखी है ना लोग, माया में बहुत लात माया लगाता है ना, माया क्या आनंद देता है, थोड़ा इतना लात लगाता है, गद्धा का लात आपने देखा है ना, गद्दा जैसा लात लगाता है, अपना खुद बच्चा खूब अफिसर सबसे लात खा कर कर घायल हो गए, तब आ जाते हैं ना, तब आकर कृष्ण से सामने खड़ा होते हैं, आनंद थोड़ा आनंद मिलता है, वो दुख को देखकर आनंद मिलता है। और कृष्ण चेतन में आ जाता है ना, कृष्ण यही तो स्वभाव है कृष्ण का, ये दुखी है मेरा भोजन कर रहा है, उनका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाता है, थोड़ा आनंद मिल गया ना तो सोचता है अभी मैं परफेक्ट हो गया। मन में एक भावना है, दूसरा भावना है साधक के लिए, ये जो सीरियस क्वेश्चन यही है पॉइंट है, पहले जो श्रद्धा था उसको कोमल श्रद्धा बोलते थे, कोमल श्रद्धा पर जीवन बिताना भक्ति जीवन ये संभव नहीं है। इसीलिए आप देखिए, आप किस भक्त को बोलिए आप क्यों सेवा नहीं करते हैं, वो बोलते हैं वो क्यों नहीं करते हैं, वो प्रभु जी इतने ये करते हैं, वो प्रभु जी, ये कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा का मतलब है जिस किसी का श्रद्धा को देखकर, किसी का भक्ति को देखकर हम श्रद्धा कर रहे हैं, उसका घटता है तो हमारा घटता है। जैसे कोई ब्रह्मचारी बनता है, वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर शादी कर लेता है, उसको देखकर उसता है, अरे 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 ये क्या हो गया। एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया, मुझे डर लगता है इतना साल के रहने का बाद वो शादी कर लेते हैं, हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। कोई यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, उधर सब टप्पर जैन करता है, इसमें भी थर्ड क्लास आदमी आते हैं कि नहीं, फेल होते हैं कि नहीं, तो कोई नहीं जैन करते हैं, कोई फेल हो जाता है रिजल्ट, जो फेल स्टूडेंट होते हैं ना वो क्या देखते हैं आपको पता है ना, सर मैट्रिकुलेशन में रिजल्ट निकलता है या ग्रेजुएशन में, जो जिस वो पहले उनका नाम देखता है, मेरा फेल, मैं फेल हो गया, तब वो देखता है कौन कौन फेल हुआ है एग्जामिनेशन में, वो पिताजी को बताएंगे, पिताजी मैं क्या फेल हुआ हूं, ये मुझसे भी बहुत पढ़ रहा था, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। ये बिल्कुल सत्य बात है यार, मेरा दिमाग में आया, मैं भुवनेश्वर में यही बात बताया, फेल स्टूडेंट हर समय ढूंढता है कौन कौन आदमी ने फेल हुआ, और सक्सेसर जो है, जो सक्सेस, वो ढूंढता है मुझसे कौन बड़ा है, क्या कौन, किसने टप्पर हुआ है, किसने टप्पर। आजकल हमारा कोमल श्रद्धा है ना, थोड़ा आ जाता है, फिर देखता है वो ऐसा छोड़ दिया मंदिर, उसको ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कोमल श्रद्धा में ज्यादा दिन हम टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि बाहर में जब दुनिया में थे अपराध नहीं थे, पाप कर रहे थे, इधर आ गए अपराध चालू हो गया, इसमें स्वाद भी धीरे धीरे, भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा, अपराध होता है। और दूसरे एक पॉइंट है, श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा होना चाहिए। भक्त संग करके हमको शास्त्रीय श्रद्धा अगर करेंगे तब तो सेवा में मन लगेगा, जप में मन लगेगा। हम क्या होते हैं, यही फेल स्टूडेंट हो जाते हैं ना, कोमल श्रद्धा पर है। हम देखते हैं वो प्रभु जी ने ऐसा बता दिया, वो प्रभु जी ने चला गया, वो डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, वो घर में क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं। घर में क्या हो रहा है, पति और पत्नी का बीच जो नाटक हो रहा है घर में, एक दिन में आप सन्यासी हो जाएंगे। उसको एडजस्ट करते हैं। एक भक्त ने मुझे बताया कि मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं बोला देखो मंदिर में ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, अपना घर में जितना पॉलिटिक्स हो रहा है इसी का एक भाग भी मंदिर में नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिक्स को आप पॉलिटिक्स नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा घर है। और लात लगाते हैं ना कुत्ता जैसा, पूंछ को नीचे करके क्या करते हैं, अपना मालिक के पास जाता है ना। पति और पत्नी दोनों में किसी का एक भी पॉलिटिक्स करता, आप कहां जाते हैं, आप पूंछ को नीचे करके उधर वही घर में, इस घर का उधर में निकल आकर उधर घुस जाते हैं। कहां जाते हैं आप, घर छोड़कर जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं, मंदिर में कुछ हो जाता है ना पॉलिटिक्स हो गया, ये सत्य बात नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स पॉलिटिक्स, प्रभुपद लिख रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स देयर इज नो पॉलिटिक्स। आप कहां भी जाइए, ये साधु का वाणी है, हम पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, पॉलिटिक्स हमारा तरफ नहीं आता है, हम घुस जाते हैं। इतना फैसिलिटीज प्रभुपाद ने दिया है भजन करने के लिए, आराम से भजन कर सकेंगे आप, प्रसाद पाओ, भजन करो, खुद का सेवा करो, जब करो, एक नंबर त्यागी बन सकते हैं आप, इधर भजनानंदी बन सकते, क्या फैसिलिटी नहीं हमारा। ये जो आपने जो बताया ना, ये लोग कनिष्ठ अधिकारी फेल स्टूडेंट है, इसीलिए वो ढूंढते हैं किसका दोष क्या है, कौन कौन फेल लिस्ट में है, इसलिए उनका मन घटता घटता जा रहा है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने ये बताया है, जब हम भक्त संग करने के लिए आ रहे हैं, हम भक्त संग किस कनिष्ठ अधिकारी, हर समय कनिष्ठ अधिकारी का संग नहीं करना चाहिए, वो मध्यम अधिकारी का संग करना चाहिए, जिसका पास दृढ़ भक्ति है उनका संग, चाहे ये गुरु भाई हो या नहीं हो, इसे मतलब नहीं है हमारा। अगर हमारा खुद का गुरुदेव का शिष्य है लेकिन वो कनिष्ठ अधिकारी है, उनका संग करने से हमारा कोमल श्रद्धा तो और भी बिगड़ता जाएगा। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला है कि तुमको गुरुनिष्ठ भक्त का संग करना चाहिए। जिस भक्त लोग का गुरु जी का ऊपर निष्ठा है, प्रभुपाद जी का ऊपर निष्ठा है, उन लोग का संग करना चाहिए, तब तो सेवा भाव आए, भजन भाव आए, नहीं तो घटता जाएगा। और मध्यम अधिकारी भी, फिर मध्यम अधिकारी का संग नहीं करना चाहिए, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए, और उत्तम अधिकारी वो सिर्फ उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए। हमारा इस संग की प्रभाव से ऐसा हो जाता है। और दृढ़ श्रद्धा भी नहीं है ना, शास्त्रीय श्रद्धा हो जाएगा ना। शास्त्रीय श्रद्धा का क्या डेफिनेशन है चैतन्य चरितामृत में, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले शास्त्र, शास्त्रीय श्रद्धा है। मेरा कुछ करने का संसार में कोई कर्म बाकी नहीं है, मैं गुरु जी का सेवा कर रहा हूं, ठाकुर जी का सेवा कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा धर्म है, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, शरीर चला जाएगा लेकिन सेवा नहीं छोड़ूंगा, ये शास्त्रीय श्रद्धा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कोमल श्रद्धा के स्तर पर दिखा ले जाते हैं, उसके बाद कुसंग हो जाता है। ये जो असंग सुसंग, इसमें कुसंग और सुसंग दोनों चलता है। संडे फिस्ट में आते हैं, लेक्चर में बैठे या नहीं बैठे, मंदिर का बैठकर पहला प्रवचन हो जाता है, क्या हो रहा है मंदिर में, ये बैठते बैठते हर जगह में ऐसा ये हालत हो गया है। नहीं नहीं नहीं, मंदिर में आते तो मंदिर सिर्फ श्रवण कीर्तन के लिए, आओ ठाकुर जी का कीर्तन कर, कथा सुनो, चलो। और मंदिर में आते हैं वो तो कोमल अधिकारी है, कोमल श्रद्धा है, और वो किसी कोमल श्रद्धा का संग कर लिया, वो तो मंदिर का बाबत में बता दिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा मन और घटते गया, क्या सेवा करूंगा इधर गया यही हालत है। इसलिए हर समय हमको प्रार्थना करना चाहिए। देखिए नरोत्तम ठाकुर ने क्या प्रार्थना किया है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, अंत में आप पढ़िए, यदि है पुनर्जन्म जन्मा नरोत्तम तव है धन्य। नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन धन्य हो जाएगा, ठाकुर जी मुझे जन्म दीजिए लेकिन मुझे संग दीजिए रामचंद्र का विराज, तार संग वो रामचंद्र का विराज का संग मुझे दीजिए, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। भगवान को यही प्रार्थना करे, मुझे कोई उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी भक्त का संग दीजिए, संग में रंग आता है, संग बलवान है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा
हरे कृष्ण महाराज, महाराज आप जब बता रहे थे कि वो जड़ भरत जब अभी जड़ भरत बन गया था तो पिछला जन्म का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं कौन हूँ, तो जनरली हम भी देखते हैं कि जब कोई एक्सपीरियंस हो जाता है जैसे जड़ भरत अभी एक्सपीरियंस था तो जो कन्विक्शन है वो बहुत कन्विक्शन बढ़ जाता है हमारा। तो जैसे इंटरनेट चला दिया हमने या मोबाइल के संग में पड़ गए, तो जब एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं इतना समय मेरा वेस्ट चला गया तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, तो हमारे भी जीवन में जब ब्रह्मचर्य का व्रत जो भी रहता है तो हम कैसे खाली श्रवण करके ही समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी मतलब श्रवण करके ही हमें आ जाना चाहिए एक्सपीरियंस कि
श्रवण करना है। श्रवण जो करता है ना वो तीन स्टेप है, तीनों स्तर है श्रवण का, एक श्रवण, एक स्मरण, मनन इसको बोलते हैं, जो सुना है उसको मनन करना है, दो है, तीन है निधिध्यासन, उसको प्रैक्टिस में लगाना, तीनों। और ब्रह्मचारी जीवन में सबसे बड़ा ये सब मिल जाएगा फैसिलिटीज, एक ही है एंगेजमेंट में रहना। ब्रह्मचारी जीवन ये सबसे बड़ा सरल सूत्र है, मन को लगाना है, कहां शास्त्र में लग रहा है तो पढ़ लीजिए, शास्त्र में नहीं लग रहा है जप करना है, अच्छा जप नहीं लग रहा है सेवा करना है, सेवा में नहीं लग रहा है सुनना है, नहीं बैठना है, अकेला नहीं रहना है, मन का साथ रहना का मतलब अकेला रहना, कोई सेवा नहीं है, श्रवण नहीं है, कीर्तन नहीं, तभी तो बहुत खतरनाक। लेकिन श्रवण ब्रह्मचारी का पहला धर्म है स्वाध्याय, हर दिन पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनको बहुत प्रोटेक्शन था। इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 घंटा बोला है ना, 2 घंटा पढ़ते हैं, देखिए कम से कम 2 घंटा पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं कैसे कंसेशन में बोल सकता हूं आप 1 घंटा पढ़िए, प्रभुपाद जी ने 2 घंटा बताया, 2 घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम शास्त्र। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया खियते चस्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरी। श्रवण और कीर्तन पढ़ेंगे और सुनेंगे दोनों मिलजुल कर ही हमारा हृदय में जो अनर्थ है ना उसको काट सकते हैं, इसमें दृढ़ हो जाता है, अपन पढ़ा है और सुना दोनों दोनों चाहिए साधु जीवन, श्रवण भी चाहिए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी चाहिए। और सबसे बड़ा ब्रह्मचारी जीवन में यही बड़ा साधन है, 55 बोलते हैं ना हिंदी में, जो भी है मेरा तो मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, उतना तक पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं देखना है, सिर्फ गुरु जी का मुख को देखकर सेवा करना चाहिए, क्या फल मिलेगा उसको छोड़ दीजिए, सेवा पहला करना चाहिए, कोई चिंता नहीं करना चाहिए, पहले गद्दा जैसा बन जाना चाहिए, बस चलो सेवा करो सेवा करो सेवा करो। हमारा उड़िया में कहावत है 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहिले किच्छि देवा, 12 साल सेवा करने का बाद गुरु जब पहला आया ना बताया कि गुरु जी मुझे कुछ दीजिए ज्ञान दीजिए, कले नहीं नहीं 12 साल सेवा करो उसका बाद कुछ मिलेगा तुम। अभी 12 साल का ब्रह्मचर्य कितना भक्त है, 12 साल प्रभु जी कुछ मिला है गुरु जी से, कुछ मिला है? प्रभु जी बोल रहे हैं मिल। तो 12 साल के बाद वो ब्रह्मचारी ने पूछा, 12 साल हो गया अब तो कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, 12 साल तुमने आश्रम में रह गया ठाकुर जी का पास, नहीं मिला तुमको? कुछ नहीं मिला, ठाकुर जी का दर्शन 12 साल हुआ ना, प्रसाद 12 साल पाया, कुछ मिला कि नहीं? ये छोटा काम नहीं है, हर दिन ठाकुर को दर्शन करना, प्रसाद पाना, सोलमाला नाम करना, कुछ मिल गया। बोला गुरुदेव अब क्या मिलेगा, और फिर 12 साल सेवा करूं। खेती बाड़ी में खेती करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, खेती करने के लिए जो घास वगैरह होता है ना उसको क्या करते, खेती बोलते हैं ना, बैल लेकर उसको साफ सफाई सुथरा करना होता है, इसी में ज्यादा टाइम लगता है। बारिश होने में कितना टाइम लगता है खेत में, बारिश होने के लिए कितना टाइम लगता है, भगवान की कृपा होने के लिए कितना, गुरु जी का कृपा होने के लिए कितना टाइम लगा, 400 साल जिया पितामह भीष्म ने, कृपा कब हुआ? ब्रह्मचारी लोग का यही सीखा है, ये गधा नहीं बनना चाहिए, मैं इतना दिन आया मेरा मन ऐसा नहीं हो रहा है इंद्र, अरे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, सेवा करना है तो करना है, क्या मिलेगा फल देखेंगे हम, जब सरसज्जा में सोएंगे तब तो देखेंगे, मरने के समय कृपा हो जाएगा। पितामह भीष्म को कृपा कब हुआ? लास्ट मोमेंट में, एंड में, उत्तरायण दिन में हुआ। और हम चाहते कि पॉकेट में कृपा को लगा कर ही घूमेंगे। एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया भद्रक में, ठाकुर जी क्यों कृपा नहीं करते हैं? मैं बोला तुमको पता नहीं है ठाकुर जी क्यों कृपा नहीं करते हैं, तुमको आज अगर इतना सेवा करते जब करते तुमको आज कृपा कर देंगे ना, कल तुम कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकाल करके सारा दुनिया में हल्ला गुल्ला कर देंगे, देखो मैं सिद्ध भक्त हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं और सिद्ध भक्त हूं, मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो गया, तुम तो ठाकुर बन जाएंगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए ठाकुर तुमको नहीं दर्शन देने थे। ये सत्य है, कलयुग में हम लोग को ठाकुर जी इसीलिए लास्ट में कृपा करते हैं, कुछ नहीं है फिर हम सोचते हैं मैं बहुत बड़ा भक्तिमान हूं, और मिल जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए ना प्रभुपाद जी जिसको खिला पिला कर रखा है आश्रम में, उसको थोड़ा कुछ मिल जाता है ना वो प्रभुपाद जी का ऊपर आवाज लगा देते हैं, इतना गद्दा आदमी है, सिर्फ कुछ मेटेरियल एजुकेशन है, वो इतना हल्ला गुला लगा देते हैं। और किसी का ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा तो क्या करेगा, रसबिहारी को रखेगा? इसलिए उनको पता है, उनको मरने की समय, जब मरने का समय आएगा तब तो उनको कृपा करना है, तब तो वो उधर जाना है, उनको पता नहीं जैसा चलेगा। यही ब्रह्मचारी जीवन है, जीवन में सेवा करना है, चलो गुरु जी का आदेश पालन करना है, सेवा करना है, ठीक है। हरे कृष्ण, हो गया प्रसाद। हाँ मत्स्तान तो निर्गुणम, नहीं माया नहीं है, माया इधर नहीं है, देखिए जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, माया का अधिकार इधर नहीं है, ये सच बात है, लेकिन हमारा भूमिका माया, जैसा प्रसाद निर्गुण है लेकिन हमारा शरीर सगुण है, भक्ति भक्ति का स्तर है ना। तृतीय स्कंद में पढ़िए, निर्गुणा भक्ति एक है, अरे 81 सगुणा भक्ति है, हम अभी सगुणा भक्ति कर रहे हैं, गुण स्तर में है हम, जिस गुण में है, जैसे श्रवण 9 प्रकार की श्रवण होता है, 9 प्रकार की कीर्तन होता है, उसका वेराइटीज है, तो हम ठाकुर जी के सामने रहते हैं, ठाकुर जी का सेवा भी करते हैं, लेकिन जिस गुण में है इस गुण की स्तर पर ही हमको भक्ति स्वाद होता है। स्थान तो निर्गुण है लेकिन हम अगर रजगुण में है तो हम जो भक्ति करते हैं, और रजगुण में फिर 3 स्तर है, रजगुण उत्तम, रजगुण मध्यम, रजगुण कनिष्ठ, उसका भी 3 स्तर है, हम जिस स्तर में है स्वाद हमको ऐसा ही लगता है भक्ति का स्वाद, लेकिन भक्ति निर्गुण है, भगवान का स्थान निर्गुण है। देखिए जो आता है ना बाहर के भक्त लोग जो आते हैं ठाकुर जी को देखते हैं, वो जितना आनंद उठाते हैं ठाकुर जी को दर्शन करके, हमारा होता है क्या? हम मुरझा जाता है, वो आनंद में नृत्य करते हैं। स्थान देखिए क्या है, हम इधर रहते हैं ना ये अपराध हो जाता है, धाम अपराध हमारे ऊपर भी लग जाता, 10 तो धाम अपराध है ना, ये धाम हो गया, धाम अपराध लगा, सेवा अपराध लगा, नाम अपराध लगा। और गुरु का भजन भी सुष्ट भजन नहीं होता है, निरपराध भजन होना चाहिए, ये निर्गुण स्थान है। हमारा गुरुदेव कहा करते थे हर समय ये साधु का कैंप है, जैसे पुलिस का कैंप होता है ना, मायावादी लोग अटक करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा बाहर जाएगा तो मायावादी लोग है ना लगा देते हैं, ये भगवान का इधर माया नहीं है, बाहर है। बाहर क्यों जाते हैं, हमारा बाहर में क्या काम है, बाहर जाएंगे ना तब तो माया अटैक करेगा। साधु का कैंप का भीतर रहेंगे ना, ये साधु का कैंप प्रभुपाद जी का कैंप है जुहू हरे कृष्ण मंदिर, इसका भीतर रहना चाहिए। इसका मतलब यही है, ठाकुर जी को अपना ना करना चाहिए, गुरु जी को ठाकुर जी को मेरा है, ये मेरा घर है, प्रभुपाद जी मेरा है, ये भाव बढ़ाना चाहिए, तब तो निर्गुण का फल मिलेगा। हम तो बोर्डिंग लॉजिंग प्रभुपाद बोल रहे फैसिलिटी ले रहे हैं, क्या हो रहा है छोड़ो, ये मंदिर का अथॉरिटी हमारा क्या है, तुम कौन हो, मंदिर का ये सब जिम्मेदारी क्या है जो मंदिर का प्रेसिडेंट का है, तुम कौन हो, तुम क्या बैकुंठ पार्षद हो, तुम्हारा सेवा के लिए प्रेसिडेंट इधर है, ये तुम्हारा स्थान भी है ना बाबा, तुम इधर रहते हो, ये ठाकुर जी का स्थान है, अपनापन करना चाहिए। मंदिर गुरु जी प्रभुपाद जब अपनापन हो जाए, ये मेरा है, एक अभिमान आता, ये मेरा मंदिर है, गुरु जी का मंदिर है, प्रभुपाद जी का मंदिर है, तब तो सब निर्गुण का फल मिलेगा। हम तो मेरा रूम है लेकिन मेरा मंदिर नहीं, देखिए हमारा क्या भाव है, मेरा रूम नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये मेरा रूम है लेकिन मंदिर, मंदिर में क्या हो रहा है छोड़ो, यो प्रेसिडेंट का है, ये सब भाव आ गया है, बिगड़ते हुए भाव ये सब आ जाता है साधु लोग ब्रह्मचार्य लोग भक्त लोग का मन में, इसीलिए स्वाद नहीं मिलता है, स्वाद नहीं मिलता है। लेकिन स्थान तो निर्गुण है, ठाकुर जी का स्थान निर्गुण है, इतना आनंद स्वर्ग में नहीं मिलता है, स्वर्ग में ऐसा भागवत क्लास कभी होता है, और स्वर्ग में जुहू में मुंबई में जो आदमी रहते हैं वो स्वर्ग जा सकता है, उनको तो अलाव नहीं है, वो तो सब पेंट शांट वाले हैं, तो इधर ही रुकेंगे। फिर भी देखिए राजबिहारी कितना दयामय, वो आधा नृत्य करते हैं, कीर्तन कीर्तन करते हैं, कुछ आनंद मिलता है ना उनको, आनंद है भगवान की भक्ति में, इतना आनंद है। पढ़िए प्रभुपाद जी का किताब, प्रभुपाद कितना ये सत्य है, आनंद है बहुत, रम जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।